8 मार्च बृहस्पतिवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। विश्व महिला दिवस के बहाने महिला सशक्तिकरण के दावे और वादे, लेकिन सच क्या है?
सालों से आरक्षण का बिल हम इस सदन में तो पारित कर चुके, बहुत कठिनाई से पारित किया, लेकिन पारित किया था, लेकिन लोकसभा में आज तक वो एजेंडा पर भी नहीं आता है।
तेलुगु देशम पार्टी के दो मंत्रियों ने मोदी सरकार से आखिरकार इस्तीफा दिया।
अभी इसी वक्त ये देखने की जरूरत है कि चंद्रबाबू नायडू ने केवल पहला कदम उठाया है कैबिनेट से अलग होने का, अपने दो मंत्रियों को निकाल लेने का, लेकिन उन्होंने एनडीए से संबंध नहीं तोड़ा है।
कार्यक्रम में शामिल होंगे आपके पत्र भी, होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। सीरिया की सेना की घेराबंदी में फंसे विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी घूटा को मदद भेजने की योजना टल गई है। दोनों ओर से हिंसा बढ़ने की रिपोर्टों के बीच इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने कहा है कि पूर्वी घूटा में मदद भेजना बेहद खतरनाक हो गया है। सीरिया में विद्रोहियों का ये अंतिम गढ़ सरकारी सेना की भीषण बमबारी झेल रहा है। सरकारी सैन्य बल विद्रोहियों को यहाँ से खदेड़ने के उद्देश्य से हमले कर रहे हैं। बीते महीने शुरू हुए सैन्य अभियान के बाद से अब तक कई सौ लोग मारे जा चुके हैं। बीती रात हुए हमलों में भी कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्टें हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की प्रवक्ता इंगी सेदकी ने कहा,
The situation is really evolving very rapidly on the ground. Part of it is related to security as well.
जमीनी स्तर पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये सुरक्षा से जुड़े हैं, जिनकी वजह से हम स्थिति में अपना अभियान जारी नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन हमें अब भी उम्मीद है। हमें कुछ संकेत मिल रहे हैं कि मदद का काफिला आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये कब होगा अभी कहना मुश्किल है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए केरल की 26 वर्षीय युवती हादिया की शादी को बहाल कर दिया है। मूल रूप से हिंदू धर्म में पैदा हुई हादिया ने इस्लाम अपनाकर अपनी पसंद के मुसलमान युवक शफीन जहां से शादी की थी। हादिया ने शादी से 2 साल पहले धर्म परिवर्तन किया था। हादिया के पिता ने दावा किया था कि उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है और उन्हें सीरिया ले जाया जा सकता है। हादिया के पिता की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केरल हाई कोर्ट के उनकी शादी को रद्द करने के फैसले को बदल दिया है। अदालत के फैसले के बाद प्रतिक्रिया देते हुए हादिया के पिता अशोकन ने कहा कि उन्हें दुख है कि उनकी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेगी जिसे वो आतंकवादी मानते हैं। ब्रितानी गृहमंत्री एम्बर रुड ने पूर्व रूसी खुफिया जासूस और उनकी बेटी पर हुए हमले को अपमानजनक अपराध कहा है। ब्रितानी संसद में बोलते हुए रुड ने कहा कि बहुत मुमकिन है कि हमले के बाद बीमार हुए एक पुलिस अधिकारी भी उसी नर्व एजेंट की चपेट में आ गए हों जिससे सर्गेई और यूलिया स्क्राइपाल पर हमला किया गया। पूर्वी रूसी जासूस सर्गेई और उनकी बेटी यूलिया ब्रितानी शहर सेलिसबरी के पास एक बेंच पर लुढ़के हुए मिले थे। रुड ने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन इस घटना को लेकर किसी भी तरह के कयासों से बचा जाना चाहिए। ब्रितानी वैज्ञानिकों ने हमले में इस्तेमाल किए गए नर्व एजेंट का पता लगा लिया है, लेकिन इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रूसी संसद के एक वरिष्ठ सांसद लियोनिद स्लत्स्की ने 3 महिला पत्रकारों की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद माफी मांग ली है। सोशल मीडिया पर लिखते हुए स्लत्स्की ने उन सभी से माफी मांगी है जो उनके जानबूझकर या अनजाने में किए गए कामों से तनाव में आए हो। हालांकि स्लत्स्की ने पहले इन आरोपों का खंडन करते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश कहा था। उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला पत्रकारों पर मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी भी दी थी। बीबीसी रूसी सेवा में काम करने वाली एक पत्रकार फरीदा रुस्तमोफा ने 1 साल पहले हुए उत्पीड़न की घटना का ऑडियो भी रिकॉर्ड किया था। रूस में यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कानून नहीं है। ईरान की राजधानी तेहरान के मेयर मोहम्मद अली नजफी के एक समारोह में शामिल होने पर विवाद हो गया है। इस समारोह में बच्चों ने नृत्य पेश किया था। नजफी का कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है क्योंकि किसी इस्लामी या शरिया कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। ईरान में नृत्य करने पर पाबंदी है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा दिन भर संदीप सोनी के साथ। आज विश्व महिला दिवस है, सारी दुनिया में मनाया जाता है, भारत में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के झुंझुनू जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत तो नहीं की, लेकिन उस योजना को विस्तार प्रदान किया। भारत के 400 जिलों में इस योजना को शुरू किया गया है। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी झुंझुनू में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, उसी समय दिल्ली में संसद में भी महिलाओं की बेहतरी पर चर्चा हो रही थी। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को सुनिए।
मुझे वो उपलब्धियां भी याद आती हैं जहां महिलाओं ने एकाधिकार का क्षेत्र पुरुषों का तोड़ा है। एक समय था पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, कमर्शियल पायलट जिसकी बात तुर्की कर रहे थे, ये सब पुरुषों के एकाधिकार के क्षेत्र थे। आज महिलाएं आर्मी में कॉम्बैट ड्यूटी कर रही हैं, एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, कृत्रिम फुट से, आर्टिफिशियल पैर से एवरेस्ट को फतेह कर रही हैं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। वहीं कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने महिलाओं की दशा की एक दूसरी तस्वीर दिखाई।
सालों से आरक्षण का बिल हम इस सदन में तो पारित कर चुके, बहुत कठिनाई से पारित किया, लेकिन पारित किया था, लेकिन लोकसभा में आज तक वो एजेंडा पर भी नहीं आता है। तो मैं समझती हूँ कि अगर एजेंडा पर आने में देर करते हैं तो कम से कम हम इस सदन में और दूसरे सदन में एक रेजोल्यूशन तो पारित करें कि हम सब प्रतिबद्ध हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए।
कांग्रेस नेता अंबिका सोनी। संसद के बाहर कांग्रेस सांसदों ने महिलाओं की बेहतरी की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया। सुनिए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने क्या कहा।
2010 में हमारे पार्टी के इनिशिएटिव से ये बिल पास भी हुआ था और उस वक्त हमें तो बीजेपी का समर्थन भी मिला। आजकल तो बीजेपी सत्ते में है, ये लोग क्यों नहीं ले आ रहे ये बिल? अगर कोई पार्टी को कुछ मॉडिफिकेशन ले आना चाहते हैं तो करने दीजिए। काफी सीरियस बात है कि हमारे, अगर आप पूरे देश का लिस्ट देखिएगा, भारत करीब 146 रैंक में है दुनिया के देशों में कि हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 11% औरत है। अगर 90 रैंक में पाकिस्तान भी है तो हमें क्या बुरा नहीं लगेगा कि हमारे भारतीय नारी में क्या कमी है? उनको भी मौका दे दीजिए, अच्छी तरह काम करेंगे राजनीति में।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर। बहरहाल दिवस कोई भी हो, अच्छी अच्छी बातें बहुत होती हैं, लेकिन देश में महिलाओं की असल स्थिति क्या है, जानने के लिए, समझने के लिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बात की।
8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ है, देश की राजधानी में बलात्कार हुआ है। हर दिन छोटे बच्चों के साथ बलात्कार बढ़ रहे हैं। अभी पिछले ही कुछ 2 दिन पहले 3 साल की बच्ची, उसको कोलकाता में एक 45 साल का आदमी खींच के ले गया, बस के अंदर उसके साथ रेप किया, और उस लड़की का 5 साल का भाई बस के दरवाजे खटखटाता रह गया और भीख मांगता रह गया कि मेरी बहन को छोड़ दो। चाहे बैंगलोर देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, ऐसा कोई स्टेट नहीं बचा है जहाँ पे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हो, जहाँ महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न नहीं हो रहा हो, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा हो। तो मुझे लगने लगा है कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल बेमानी बात होती जा रही है। काम तो हो नहीं रहे हैं, सेलिब्रेशन बहुत होती हैं,
लेकिन बात तो की जा रही है। सेक्स रेशियो हरियाणा में बहुत अच्छा हुआ है, झुंझुनू में बहुत अच्छा हुआ है, राजस्थान में झज्जर में बहुत अच्छा हुआ है, जहां 2011 की जो सर्वे सेंसस रिपोर्ट थी वहां पे सबसे कम बताया जा रहा था। तो ये सब जो बताया जा रहा है वो सिर्फ एक गुब्बारा मात्र है या उसमें भी कुछ सच्चाई है?
जी, मुझे लगता है कि देखिए, डेटा जो आ रहा है अगर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी चीजें हो रही है उसके बारे में भी हमें बात रखनी चाहिए। लेकिन गुजरात में सेक्स रेशियो बहुत कम हुआ है, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत कम हुआ है। तो ये एक स्टेट में अगर कुछ बढ़ गया हो, क्या बस उससे हम संतुष्ट हो सकते हैं? जब तक महिलाओं को उनकी इज्जत नहीं मिलेगी, जब तक 8 महीने के बच्चे इस देश में सेफ नहीं होंगे, क्या इंटरनेशनल वुमेन्स डे और क्या हम चीजें मना रहे हैं? बड़े दुख की बात होती है, बस ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे महिलाओं के लिए एक दिन, बड़े बड़े लीडर्स, और मैं तो मतलब कहूंगी सभी जगह का ये हाल है, बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, बात रखते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर काम करने की बारी आती है तो मुझे लगता है कि काफी कमी पाई जाती है।
एक ये सवाल भी उठ रहा है कि बहुत दिनों से महिला आरक्षण की बात चल रही है, लेकिन महिला आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा? अगर संसद की बात कर लें या बाकी जगहों पर, महिला आरक्षण की स्थिति आज ऐसा क्यों है?
जी मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति सिर्फ उनके लिए अभी कि नाम हो गया, एक अच्छे बजवर्ड हो गया है कि हाँ जी महिला दिवस है, महिलाओं की सुरक्षा करो, महिलाओं को इक्वालिटी से ट्रीट करो, लेकिन एक्चुअली ये हो नहीं रहा ना। आज भी हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 9% महिलाएं हैं। क्यों नहीं, हम इस देश की आधी आबादी हैं, क्यों हमारे देश के पार्लियामेंट में 50% महिलाएं से ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल सीधे सीधे कमी है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी कमी है कि टिकट नहीं देती हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज की भी बहुत कमी है कि कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत अपने आप को जब वो पॉलिटिक्स में आती हैं तो उन्हें बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ता है।
क्या आपको लगता है कोई पॉजिटिव वजह भी है जिसकी वजह से हम आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, या सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं?
पॉजिटिव क्यों नहीं है, हर महिला अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रही है। वो जब जिंदगी में संघर्ष करती है तो वो कहीं ना कहीं बहुत जगहों पे जीतती है, कहीं ना कहीं हारती है। तो बिल्कुल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बहुत महिलाएं इस वक्त ये फील भी कर रही होंगी कि हाँ बहुत कुछ पॉजिटिव है। मैं थोड़ा सा इस वक्त डिस्टर्ब्ड हूँ क्योंकि एक 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हुआ है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बात कर रही थीं सरोज सिंह। और आइए अब बताते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई, कैसे हुई। नवीन नेगी और इंद्रजीत कौर की जुबानी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक मजदूर आंदोलन से उपजा है। इसकी शुरुआत साल 1908 में हुई थी जब 15,000 औरतों ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों की मांग की थी।
इसके अलावा उनकी मांग थी कि उन्हें बेहतर वेतन और मतदान करने का अधिकार भी दिया जाए। इसके एक साल बाद यानी साल 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमरीका ने 8 मार्च को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया।
इस दिवस के पीछे मूल सोच एक महिला की ही थी। क्लारा ज़ेटकिन नामक एक महिला ने वर्ष 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी औरतों की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया था। उस कॉन्फ्रेंस में 17 देशों की 100 महिला प्रतिनिधि मौजूद थी। सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया था।
सबसे पहले साल 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, लेकिन तकनीकी तौर पर इस साल हम 107वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं।
वर्ष 1975 में महिला दिवस को आधिकारिक मान्यता उस वक्त दी गई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे वार्षिक तौर पर एक थीम के साथ मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर।
वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को हालांकि संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं मिली है।
चलिए अब बात राजनीति की। तेलुगु देशम पार्टी के 2 मंत्रियों ने मोदी सरकार से आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। ये 2 मंत्री हैं अशोक गजपति राजू और YS चौधरी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू से बाकायदा टेलीफोन पर बात की थी, लेकिन बात शायद बनी नहीं। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इस पर राजी नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है हम बताएंगे आपको आगे, लेकिन पहले जानते हैं इस घटनाक्रम से आंध्र प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, कैसे पड़ेगा। यही समझने के लिए मैंने आपसे कुछ देर पहले हैदराबाद फ़ोन लगाया और वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक से बात की।
तेलुगु देशम पार्टी ने ये जो निर्णय लिया है कि अब वो एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी, तो इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो खुद आंध्र प्रदेश की राजनीति है, जहां पे एक तरफ सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी है और दूसरी तरफ विपक्ष वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है जिसके अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी हैं। तो आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने का जो मुद्दा है उसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में काफी जबरदस्त खींचातानी चल रही है गत 3 वर्षों से। पहली बार नहीं है जबकि अरुण जेटली ने या केंद्र सरकार ने ये कहा है कि विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। 2016 में भी अरुण जेटली ने बात कही थी और उस वक्त से जगनमोहन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाए हुए थे कि आपको सरकार से हट जाना चाहिए अगर सरकार आपका केंद्र सरकार अगर आपकी बात नहीं मान रही है। तो अब जाके उन्होंने ये डिसीजन शायद ये फैसला इसलिए लिया है नायडू ने इस मोड़ पे आके कि केवल एक वर्ष रह गया है अगले चुनाव के लिए, आम चुनाव के लिए, और राज्य की जनता जो है वो खुश नहीं है जिस तरह का की स्थिति इस वक्त राज्य में है। आर्थिक स्थिति हो या विकास के कामों की स्थिति हो, नायडू कह रहे हैं कि जब बंटवारा हुआ 2014 में राज्य का तो हमारी हालत उस वक्त से बहुत खराब है। तो केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ, विशेषकर अगर राजधानी के निर्माण की बात की जाए, नए राजधानी के, और पोलावरम परियोजना जो है वो बहुत ही बड़ी परियोजना है, और राज्य सरकार का कहना है कि उसने 12,500 करोड़ रुपए अपनी जेब से अब तक इस पे लगाए हैं, जबकि पूरा खर्चा केंद्र को देना चाहिए था, और केंद्र ने अब तक 5,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं। और अपने बचावों में बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो पैसा दिया गया है उसका हिसाब किताब राज्य सरकार ने नहीं दिया है। तो इस तरह से ये दो अहम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष और सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम की कशमकश के परिणाम के स्वरूप में ये स्थिति सामने आई है।
उमर साहब, आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे, मोदी सरकार में 4 साल साथ रहने के बाद टीडीपी अब अलग होती है, तो इससे अगले चुनाव में उसे फायदा होगा या इसका असल फायदा वाईएसआर कांग्रेस उठा के ले जाएगी और टीडीपी शायद वो फायदा ना ले पाए जिसकी उसे उम्मीद है?
अभी इसी वक्त ये देखने की जरूरत है कि चंद्रबाबू नायडू ने केवल पहला कदम उठाया है कैबिनेट से अलग होने का, अपने दो मंत्रियों को निकाल लेने का, लेकिन उन्होंने एनडीए से संबंध नहीं तोड़ा है, अभी भी तेलुगुदेशम पार्टी बीजेपी के साथ है। तो अगले शायद एक आध हफ्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर ये स्पष्ट होगा किस हद तक नायडू गंभीर हैं अपने इस फैसले में कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लगता मुझे ये है कि अभी भी कोशिश हो रही है पर्दे के पीछे कि दोनों पार्टियों के संबंध टूटने ना पाए। नरेंद्र मोदी ने आज खुद बात की चंद्रबाबू नायडू से, जिसमें नायडू ने स्पष्ट किया कि क्यों उन्हें ये कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ा है। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री की ओर से शायद ये कहा गया कि आप कुछ संयम बरतें, कुछ समय दें, लेकिन चूंकि जहां तक विशेष दर्जे का सवाल है उस पर केंद्र कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, अगर आप विशेष दर्जा हमें नहीं दे सकते तो इस वक्त तो हम इस केंद्र की सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन पार्टियों का संबंध का क्या होगा उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिर अहम सवाल यह है कि आगे क्या हो सकता है, भविष्य क्या नक्शा कैसे बनेगा। तो जगन मोहन रेड्डी की स्थिति मजबूत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त वो पूरे राज्य की पदयात्रा पर लगे हुए हैं और उसी पदयात्रा के दौरान आज उन्होंने कहा है कि 21 मार्च को उनकी पार्टी संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करेगी मोदी सरकार के खिलाफ, और उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी को चुनौती दी है कि अगर आप अपने फैसले में गंभीर हैं तो प्रस्ताव का आप समर्थन करें, वरना ये समझा जाएगा कि आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। ये जो ड्रामा है इस वक्त, ये जो खींचातानी की ये राजनीति चल रही है, इसमें और तेजी आएगी और तनाव बढ़ेगा।
ये थे हैदराबाद से वरिष्ठ पत्रकार उमर फारूक। और आइए अब आपको बताते हैं ये विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, नवीन नेगी और राखी शर्मा की जुबानी।
विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा पहली बार फाइनेंस कमीशन ने साल 1969 में पेश की थी।
इस श्रेणी में शामिल राज्यों को केंद्र सरकार से अलग से सहायता और टैक्स रियायतें मिलती हैं।
आमतौर पर पिछड़े या गरीब राज्यों को इस श्रेणी में शामिल किया जाता रहा है।
शुरुआत में सिर्फ 3 राज्यों असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था,
लेकिन बाद में अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे 8 और राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया।
कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के पीछे तर्क ये था कि उनके पास संसाधनों की कमी है और उन्हें विकास के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत है।
विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए जरूरी है कि राज्य का इलाका पहाड़ी हो, आबादी का घनत्व कम या उस राज्य में आदिवासी आबादी की बड़ी हिस्सेदारी हो।
यदि किसी राज्य की सीमा पड़ोसी देश से लगती हो और सामरिक रूप से उसका काफी महत्व हो तो उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
इसी तरह आर्थिक और बुनियादी ढांचे के मामले में पिछड़े राज्यों को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है।
विशेष राज्य का दर्जा देने का फैसला आमतौर पर राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं।
बीबीसी इंडिया बोल।
त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जीत, बीजेपी शासित राज्यों की संख्या बढ़कर हुई 21। उधर तेलुगु देशम पार्टी ने मोदी सरकार से तोड़े रिश्ते। इधर विपक्ष में एकजुटता की कोशिशें फिर तेज। क्या है इस घटनाक्रम के मायने, यही है इस हफ्ते बीबीसी इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब बात भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की, जहां नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने आज चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन उनकी राह इतनी भी आसान नहीं है। दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
I, Nephew Rio, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India.
नागालैंड में नई सरकार के गठन को लेकर चली सियासी उठापटक के बाद आज एनडीपीपी नेता नेफ्यू रियो ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दरअसल नागालैंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में राज्यपाल ने रियो को 16 मार्च तक अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है। एनडीपीपी ने बीजेपी के 12 विधायकों के साथ मिलकर इस नई सरकार का गठन किया है। एनडीपीपी के पास 18 विधायक है, जबकि जनता दल यूनाइटेड के एक और एक निर्दलीय विधायक ने रियो को अपना समर्थन दिया है। नागालैंड के चौथी बार मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो के सामने कई चुनौतियां होंगी। उनकी सबसे बड़ी चुनौती गठबंधन की सरकार को चलाना है, क्योंकि एनपीएफ के पास 26 विधायक है और ये पार्टी बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से अभी बाहर नहीं हुई है। एनपीएफ पार्टी के प्रवक्ता अचुम्बे मोकिकोन ने बीबीसी से कहा,
बीजेपी लोग वो लोग यूनिलैटरल डिसीजन लिया, ये एनपीएफ को साथ में सरकार नहीं बनाएगा। तो बीजेपी इज अ मेजर नेशनल पार्टी है, हम लोग सिंगल लार्जेस्ट मिला, लेकिन हम लोग का मेंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 27 मेंबर्स है, ये इट्स अ वेरी फोर्सफुल ऑपोजिशन होगा।
नागालैंड में पिछले लंबे समय से क्षेत्रीय दलों का शासन रहा है, लेकिन यहाँ बुनियादी विकास को लेकर लोगों में बड़ी शिकायत है। प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाली स्वतंत्र पत्रकार असेनला जमीर कहती है,
रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो आएगा ना नहीं आएगा वो भी हम लोग को अभी तो पता नहीं चला। पहला भी वो चीफ मिनिस्टर था उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ, पहला गवर्नमेंट जो था वो भी बहुत अनस्टेबल था।
नेफ्यू रियो एक ऐसे नेता है जो सीएम की कुर्सी छोड़कर साल 2014 में प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट दिमापुर से संसद पहुंचे थे, लेकिन केंद्र की राजनीति में वे ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और अब फिर से बीजेपी के सहारे राज्य में वापसी की है। रियो ने इस बार बीजेपी के साथ चेंज इज कमिंग का नारा लगाया है। प्रदेश में विकास और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बता रहे नागालैंड बीजेपी के प्रवक्ता जेम्स बिजोट कहते हैं,
देखो हम लोग का मेन चैलेंज इतना साल से नागालैंड में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ गुड गवर्नेंस नहीं हुआ, स्टेबिलिटी नहीं हुआ, इसलिए इस बार हम लोग का डेवलपमेंट मेन प्रायोरिटी है अंडर नरेंद्र मोदी, और हम लोग को यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए। तो रियो हैज फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया।
60 विधानसभा सीटों वाले नागालैंड में दरअसल एनपीएफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं जुटा पाई और एनडीपीपी ने सरकार बना ली है। लिहाजा आने वाले समय में इस पहाड़ी राज्य में एक स्थिर सरकार का बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होगी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
और अब बारी है श्रोताओं की, आपके पत्रों की।
आपकी राय में मैं हूं आपके साथ इंदु पांडे, मेरा नमस्कार। और आज मेरे साथ हैं
पंकज प्रियदर्शी, और मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को नमस्कार।
तो चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करें।
बिल्कुल शुरू कीजिए।
हमारे पास देखिए ये तीन
पोस्टकार्ड। सबसे पहले हम महिला दिवस पर सभी अपने श्रोताओं को और खासकर जो महिला श्रोता हैं उनको हम इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं।
शुक्रिया। ये हमारे पास एक ही इंसान के तीन पोस्टकार्ड आए हैं। देखिए सब कुछ एक ही तरीके से लिखा हुआ है। ये है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, ये अध्यक्ष हैं किसी रेडियो श्रोता क्लब के सातनपुरवा
अमेठी। बहुत पुराने श्रोता हैं प्रमोद जी।
जी, कुल मिलाके इन्होंने यही लिखा है कि बीबीसी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सब इनको बहुत अच्छे लगते हैं, और इन्होंने तकरीबन सभी के नाम लिए हैं, समीर आत्मज मिश्र, विनीत खरे, बहुत सारे नाम हैं इसमें। श्वेता सिंह को भी कहते हैं कि उनकी बहुत दिनों से कोई रिपोर्ट नहीं सुनी है हमने। तो कुल मिलाके ये कह सकते हैं कि बीबीसी उनको बहुत पसंद है।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, और जिनका भी आपने नाम लिया है और बीबीसी के कार्यक्रम आप इतनी तल्लीनता से सुनते हैं, तो हम आपको उसके लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं।
और ये पोस्टकार्ड हमारे पास आया है अशोक कुमार ठाकुर का, मालेटोला आदलपुर दरभंगा से भी। ये भी हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं। लिखते हैं कि श्रीदेवी की दुखद मृत्यु का जब समाचार प्रस्तुत किया गया 7:30 बजे की न्यूज़ में शाम को, तो वो पूरा प्रोग्राम इनको बहुत अच्छा लगा था, और मेघालय चुनाव के बारे में भी काफ़ी नवीनतम जानकारी इनको मिली जो बहुत पसंद आई।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करते हैं कि सबको सही समय से और जो विश्वसनीय जानकारी है वो उन तक पहुँचे, और हम इसमें सफल हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और हमारे पास ये संदेश आया है आशुतोष का, लिखते हैं कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे सबको शुभकामनाएं और अभिवादन। उसके बाद लिखा है कि आदर्श राठौर द्वारा साप्ताहिक और बहुप्रतीक्षित दुनिया जहान संतोषजनक नहीं रहा, बहुत घिसा पिटा और सतही विश्लेषण रहा। जब आप जिस विषय पर बता रहे हों तब कम से कम समुचित सूचना दें तो अच्छा होगा।
मैं भी इनका संदेश देख रहा था और इन्होंने आगे रेहान साहब की विवेचना का भी जिक्र किया है और उसकी प्रशंसा की है। आशुतोष कुमार पांडे हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं इंदु, और बहुत तल्लीनता से ये भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, तो इन्होंने जो सलाह दी है, जो इन्होंने टिप्पणी की है दुनिया जहाँ पे, तो आदर्श राठौर तक हम ये बात ज़रूर पहुँचा देंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें और कितना हम सुधार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका।
और ये चिट्ठी है एक बार फिर से रेहान फजल के प्रोग्राम विवेचना की तारीफ में लिखी गई है। लिखा है नीतीश, रिंटू और रितेश कुमार यादव, ब्रैकेट में लिखा है तीन भाई, यानी कि ये तीन भाई हैं जिन्होंने मिलकर ये चिट्ठी हमें लिखी है भोजपुर बिहार से।
जी।
लिखते हैं कि बीबीसी प्रसारण की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर लिखी पुस्तक पर जो रेहान फजल की विवेचना थी बहुत लाजवाब लगी, और इनकी शिकायत है कि निखिल रंजन के बाद का दुनिया जहान उतना दमदार नहीं रह गया, प्लीज़ कुछ कीजिए।
आप देखिए, प्रगति की बात जब होती है तो कई लोग आते हैं, बीबीसी में जुड़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं, सफ़र पर निकलते हैं अच्छे के लिए। तो निखिल भी अब किसी और संस्था से जुड़ चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि दुनिया जहां का जिस तरह का लेवर और जिस तरह का फ्लेवर हम इस कार्यक्रम के दौरान लेके आते हैं वो बना रहे। मैं तीनों भाई से ये कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के कार्यक्रम का जो प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मूल भावना उसका कंटेंट है। और दुनिया जहाँ में हम ये कोशिश करते हैं कि दुनिया में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो वहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रही हैं और कहीं ना कहीं भारत पर भी उसका असर होता है, तो उस तरह की खबरों को हम ला के उसका विश्लेषण करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम को जिस तरह पहले जाता था प्रोग्राम, उस तरह जाए और आपको पसंद भी आए।
ये हमारे पास मेल आया है गौतम दत्ता किशनगंज से, लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस पे आपके यहाँ एक कहानी छपी, हरियाणा के गाँव को चुना जहाँ की अधिकतर बालिकाएं भारतीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये विषय उनको बहुत पसंद आया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी सहयोगी गुरप्रीत ने वो रिपोर्ट की थी अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, तो हम उन तक आपका जो संदेश है वो ज़रूर पहुंचा देंगे। हमारी कोशिश भी इंदु रहती है कि हम कुछ इस तरह की खबरें आपके सामने लेकर आएं जो न सिर्फ ऐसी हो जिस पर बहुत कम लोगों की नज़र पड़ती है और वो एक समाज का प्रतिबिंब भी होती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो साथ में एक बहुत अच्छी बात इन्होंने ये भी लिखी है कि भारत में बाल विवाह में भारी कमी का आना सचमुच एक गर्व की बात है, तो आज के दिन ये बात शायद काफी सही रहेगी।
बिल्कुल बिल्कुल। और चलते चलते इंदु जी पता बता दें
जी,
बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और अगर ईमेल से हमें पत्र लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
श्रोताओं के पत्रों के बाद खेल समाचार की बारी। खेल समाचारों के साथ सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में हाजिर हैं। कोलंबो में भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमें T20 मुकाबले में आमने सामने हैं, ताज़ा स्कोर बताएं क्या चल रहा है अभी।
बिल्कुल संदीप जी, 74 रन पर है बांग्लादेश और 4 विकेट के नुकसान पर है, और 11वां ओवर अभी चल रहा है। और अगर बात करें शुरुआत के गेम की, तो फिर टॉस जो है वो भारत ने जीता था लेकिन गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और अब अगर हम आगे बढ़े तो आज महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे खबर है इंडियन वेमेन हॉकी टीम की तरफ से, दक्षिण कोरिया में इनका दौरा चल रहा है और तीसरे मुकाबला आज था जिसके अंदर दक्षिण कोरिया से भारतीय टीम जो है वो हार चुकी है, लेकिन 1-2 से हारी है, लेकिन पिछले जो 2 मुकाबले हुए थे उसमें भारत ने फतह हासिल की थी। और अगर बात करें टेनिस के कोर्ट की, तो मारिया शैरापोवा ने नौमी ओसाका से हार का सामना किया है। जापान की खिलाड़ी है नौमी ओसाका और बेहद बेहतरीन और उमदा खिलाड़ी हैं, लेकिन मारिया शैरापोवा आज जो है वो हार का सामना उन्हें करना पड़ा।
खेल में हार जीत तो लगी रहती है। खेल समाचारों के बाद वक्त हो चला है मुख्य समाचारों का, एक बार फिर चलते चलते खास खास खबरें दिलनवाज पाशा से।
सीरिया की सेना की घेराबंदी में फंसे विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पूर्वी घूटा को मदद भेजने की योजना टल गई है। दोनों ओर से हिंसा बढ़ने की रिपोर्टों के बीच इंटरनेशनल रेडक्रॉस ने कहा है कि पूर्वी घूटा में मदद भेजना बेहद खतरनाक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए केरल की 26 वर्षीय युवती हादिया की शादी को बहाल कर दिया है। मूल रूप से हिंदू धर्म में पैदा हुई हादिया ने इस्लाम अपनाकर अपनी पसंद के मुसलमान युवक शफीन जहां से शादी की थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अभिमन्यु साह ने। अगली मुलाकात भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक दीजिए इजाजत।